अब माइक नंबर एक से सवाल किया जाए।
चंद्रभानु प्रताप, आई एम अ डेंटिस्ट। माई क्वेश्चन इज, यू हैव इन योर लेक्चर यू हैव सेड अबाउट द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी वॉज मोर एडवांस वेन इट वॉज रिटन द कुरान। द डेमोक्रेसी वॉट एवर रिटन इन द कुरान इज बेटर देन वॉट वी प्रैक्टिस राइट नाउ मॉडर्न। कैन यू एक्सप्लेन इट वॉट इज रियली मीन?
भाई साहब ने कहा सवाल उनका, मैंने तकरीर में कहा कि कुरान में जो डेमोक्रेसी मेंशन है वो आज से बेहतर है। मैंने ये कहा सूरह मुमतहिना में सूरह नंबर 60 आयत नंबर 12 में कहा गया है कि ए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खवातीन, जब औरतें तुम्हारे पास आएंगी बयात के साथ, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था बयात जो इस्लाम में है वो मॉडर्न वोटिंग से बेहतर है। डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा था मैं, मॉडर्न वोटिंग। आज के मॉडर्न वोटिंग में हम क्या करते, हम स्टेट के लीडर को चुनते हैं, चाहे वो इलाके का हो या स्टेट का हो या कंट्री का हो, ठीक है। इस्लाम में जब खवातीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात लेती है वो दो चीज़ कर रही है, ये मान रही है कि वो अल्लाह के रसूल है, पॉइंट नंबर वन, जो सबसे हाईएस्ट। सेकेंडली वो ये भी मानती है कि ही इज़ द पॉलिटिकल हेड, और अमीर भी मानती उन्हें, तो इट वॉज अ डबल वोटिंग, फार सुपीरियर देन मॉडर्न वोटिंग। एंड ए वुमेन कैन वोट इन इस्लाम, एंड वेन दे वोटेड वॉज फार सुपीरियर देन मॉडर्न वोटिंग।
हाउ इट इज फार सुपीरियर? शी वॉज द ओनली वुमेन हु वॉज वोटिंग एट दैट।
हु?
What you have said, आपने जिनका जिक्र किया, she was the only one who was saying at that time.
भाई साहब मैं कुरान का जिक्र कर रहा हूँ, जब औरतें, खवातीन, many women came to the prophet and agreed that he was the messenger, not one, many. It is trying to say that these people, what they did, it was far superior to modern voting.
But how come? It's, I don't...
Because a normal modern voting, brother.
Because this is the way of expressing, not the voting.
That's right. Whatever, wherever you have a voting, that time there was a ballot system nahi tha udhar, kidhar bhi nahi tha duniya mein. Duniya mein kahan nahi tha? It was by voice only. Now the ballot system came. So what I'm trying to say, the women had voting power that time also. Brother, at that time, 1400 years back, the evidence of women wasn't taken. Leave aside voting. So I'm telling you, 1400 years back, Islam gave rights to the women even to vote. You're talking about what we are doing now. At that time, witness of women wasn't considered. Do you know that? Even in Judaism, even in Hinduism. So that time when the world was in ignorance, that time Islam gave right for a woman to be witness, also vote. Hope that answers the question.
Assalamu alaikum. My name is Dipan Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq?
Bhai sahab ka sawal tha ki zaruri kyun hai ki agar ek aurat apne shohar ke sath talaq ho jata hai to use dusre se third party se shaadi karna zaruri kyun hai pehle shohar se wapas karne ke liye? Ye sawal hai, sawal abhi dohra hai, jawab de raha hu main. Ye logo ko galat fehmi hai कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरे डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से, बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड, लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है, अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, what you are saying is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइंसाफ़ी होती है, फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, तीन मार रोको, फिर जाओ, फिर से दो साल बाद याद आता है, नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सुनान में 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियां बीवी नहीं बने जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों, ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना, ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा ना अभी तक के, एक बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर एक बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो, आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो, और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा, नो डाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो डाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना, तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं, अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना, ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में वो हराम करते, प्लानिंग करना तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है, कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो। इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माय नेम इज़ ज़ाहिद एहसान, बाय प्रोफेशन आई एम अ टेलर। माय क्वेश्चन इज मुस्लिम वुमेन इज लायबल फॉर द मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ आफ्टर डिवोर्स।
भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है ख़वातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी ज़रा बढ़ गया होगा। वो क्या है? इस्लाम में मेहर है। मेहर मतलब शादी के टाइम पे ही मेहर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पहाड़ भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पहाड़ देते लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस? तो इस्लाम के अंदर मेहर है। मेहर की कई वजह हो सकती है। वो मेहर लेके अपने वालदेन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है, और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में मेहर तो उसका है, वो मेहर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछे तो उसकी गलती, मेहर तो मिल गया। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई नहीं कर रहा तो माशरा करेगा, माशरा नहीं करेगा तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेंस राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको मेहर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे, वो नई शादी करेंगे उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुर्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती। उसका नया शौक उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया मैरिज देने का, तो नया मैरिज देने का पुरानी बीवी को मेंटेन करने का तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेंस राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने सही इंतज़ाम किया है, लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
अगला सवाल माइक नंबर 3 से खवातीन की ओर से हो गया।
This is Arpita Solomon. I'm a student. My question to you is, was Jesus really crucified or not?
Was Jesus Christ crucified or not?
Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified.
Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was a debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I'll give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا قَتَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّيَ عَلَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّتِبَا ذَنْ. With only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you're a Christian, sister, correct?
Yes, I am. And yes, our Bible says that Jesus.
So, sister, wait, I haven't completed my answer. Since you're a Christian, you may not believe in the Quran. I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proofs from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. But this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, O Master, show us wonders and miracles. So Jesus Christ, peace be upon him, says, Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips. If we know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there. He goes to Joppa. Now, while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers. Peace be upon him. He says that, I am the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he's thrown in the sea, he ought to die. In a raging sea where there is a storm, when someone is put into the storm, in the sea he should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah. He ought to die. He does not die. He's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross, as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, was Christ really crucified?
Okay, thank you.
This is Sawal B. Mic number 3 says,
my name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now.
Well, as for basically, I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam?
Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. Aur agar usse shaadi karne ka Muslim ke saath, I'll go back to Urdu because it's Urdu crowd. Sawal tha ki agar usse Muslim se shaadi karna hai, to kya zaruri hai ki wo Islam kabul kare? Sister, agar aap kehte hai ki aap humanism insaniyat mein mante hai, to Islam mein sabse pehla cheez hai kya insaniyat hona chahiye aap mein, number one. Aur ek cheez, agar gaadi chal rahi hai, ek chaak gaadi ka tractor ka hai aur ek chaak cycle ka hai, to gaadi chal sakti kya? Ek truck ka chaak hai, ek cycle ka hai, to gaadi chal nahi sakti. Charo pahiye yaksa hona chahiye to gaadi chalengi. To Islam ke andar hai ki but parasti galat hai, ek khuda ko mano, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mano.
Agar sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan.
Hinduism mein bhi likha hua hai ki Bhagwan ek hai, but parasti galat hai. Hinduism mein aur bhi likha hua hai, Hinduism padhenge to aapko manna padega ki ek aakhri paigambar aane wale hai jiska naam hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To agar aap sachche insaan hain to ishwar ke ilawa ek khuda ke ilawa aapko aakhri paigambar mein bhi manna padega aur aakhri paigambar ko jo kitab nazil ki usko bhi manna padega. Aap agar chahe aapka naam mat badlo, mujhe itraz nahi hai, lekin aapko ek khuda mein manna padega, aakhri paigambar mein manna padega, aakhri paigambar ki kitab mein manna padega. Yehi sahi insaniyat hai. इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए. पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है. आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुकी हैं. आखिरी किताब है कुरान मजीद. अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा. अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं. और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम. आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं. अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुतपरस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.
अगला सवाल माइक नंबर 3 से.
यस सर, एक्चुअली व्हाट यू सेड दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन. आई वाज नॉट आस्किंग समथिंग to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not? If the girl is not converting, why there is issues have been
Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you are a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow his commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being, and you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue, because that person who is a Muslim, he agrees with the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl. I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question.
Assalamu alaikum, Zakir Naik sahab. Mera naam Vikas hai, Vikas Gupta. Aur main ek student hoon. Aur main tahe dil se aapka shukrgizar hoon ki aapne jo jigyasa ki jot jagai hai hum sab ke andar dharm ke bare mein janne ke liye. Aur मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर, तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है?
भाई का बहुत अच्छा सवाल है, सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल ज़रा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है? काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना, तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूँ लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है, आप समझ रहे ना। तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है उसको कहते मुस्लिम, और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूँ, बुत परस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते ज़रूरी नहीं है तो उसे कहते कुफ्र। कुफ्र अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर।
बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता, इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं?
माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको किसने मारा काटा?
मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं?
वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते वो इस सूरह तौबा की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है?
6
को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو, اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, اسے چھوڑ مت دو, اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. اسکارٹ ہم ٹو اے پلیس آف سیکورٹی. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے صرف چھوڑو مت, ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کے آیتیں. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے, اور جہاں بھی جہاد کے آئے تھے جنگ کے میدان میں, جب آپ ملتے غیر مسلم سے وہ آپ کو قتل کرنا ہے قتل کرو, اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں, قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے, لڑنے کے کتنے شلوک ہے, تو وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے
جہاد کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے.
سنیے میری بات, دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھے لکھا مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے, کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا, دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں, وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا, بھگوت گیتا جانتے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42 43 44 45, اس کے اندر ارجن کہتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواز اور کوروواز, پانڈواز 5 بھائی کوروواز 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتے دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے, کیا کہتے؟ اے ارجن, تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ, نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ کشتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں کہتے کشتریا کا دھرم ہے لڑنا, اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. کشتریا وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں, اعتراض کرتے اسلام کے دشمن کرٹکس, ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں, اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر لوگ بولتے کیسا مذہب ہے, لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائیں گا, غلط مذہب ہے. لیکن بھگوت گیتا پڑھیں گے بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 37 37, شری کرشن کہتے ارجن سے اے ارجن اٹھ کے لڑ, اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائیں گا, اگر زندہ واپس لوٹیں گا تو اسے دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں, وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. تو ارون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں, اس نے خود اپنی بھگوت گیتا پڑھا ہی نہیں. ارون شوری نے مہابھارت بھی شاید نہیں پڑھا. اگر مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مسٹیک نکالتا ہی نہیں. اب سمجھ رہے؟ تو
یہ مسٹیک
نہیں نکال رہا, میں نے کب کا نکال رہے بھائی, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں, میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو. یہ کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے کافر کو کافی مارو, تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے کیا؟ چھوڑتے تھوڑی تھے. یہ غلط فہمی ہے, آپ سمجھے نا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو, ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو ماننے کے لیے, تو آپ ان کو مارو. یہ ہے ہوپ دانس دا کوشچن.
مائک نمبر 3 سے خاتون سوال کریں.
آئی ایم مسز ہلری پانگ And this is the second question I want to ask you, that I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize.
Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question.
Main Rinta Sardar, main Satragaj se aaya hua hoon. Mera question hai.
अपना पेशा बतलाएं।
मैं एक व्यवसायी हूँ। जैकेट नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिक। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाज़त लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिक घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाज़त ना लेके दूसरे जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत?
भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना ज़रूरी? बेशक बालिग होना ज़रूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये ज़रूरी है कि माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाज़त फ़र्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालदेन की इजाज़त लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फ़र्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ, तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा सही बुखारी में, जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43, हदीस नंबर 69, 69। एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालदेन की इजाज़त फ़र्ज़ नहीं है, लिए तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी वालदेन उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना माँ। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं, तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियाँ बीवी राज़ी है लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है क्या, नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज़ है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर ना महरम ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है अपने एक अच्छा लड़का है इज़्ज़तदार है तो उसे पैगाम पहुँचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुँचाओ, मिलो बात करो तहकीक करो नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना थिएटर में बैठना आखिरी रो पे ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है शादी कर सकते दोनों राजी है तो शादी कर सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन माइक नंबर 3 से।
सलामुअलैकुम आमार नाम सपना आछे। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়?
ইনকা সওয়াল হ্যায় কি জিস তরহ সে হাম বুত পরস্তি করতে হ্যায় আপ ভি মক্কা শরীফ মে ইটোঁ কি দিওয়ার কি বুত পরস্তি হি তো করতে হ্যায়।
বহন নে বহুত আম সওয়াল পুছা হ্যায় কি আপ জব বোলতে হ্যায় ইসলাম মে বুত পরস্তি হারাম হ্যায় तो आप मक्का में जब जाते हैं मक्का में भी आप संग अस्वद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता ना संग अस्वद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं हम मानते हैं इन कॉन्ग्रीगेशन जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहाँ भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल इदरूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उमरा या हज के दौरान तवाफ करते हैं सरकम एम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है हज़रत उमर रज़ी का, सही बुखारी की हदीस है जिल्द नंबर 2 किताब और हज बाब नंबर 56 हदीस नंबर 675। इस हदीस में हज़रत उमर रज़ी कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है ना कोई फ़ायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के अजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रोमिन दास फ्रॉम कोलकाता, आई एम एन एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। माय क्वेश्चन टू डॉक्टर मिस्टर जाकिर नायक, द फॉलोअर ऑफ अहले हदीस सेज इन इस्लाम देयर आर ओनली 2 फेस्टिवल्स, दैट इज ईद उल फितर ईद एंड ईद उल अज़हा बकरीद, एंड देयर आर नो अदर फेस्टिवल इन इस्लाम, इज इट करेक्ट? प्लीज एक्सप्लेन। And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic, it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world?
भाई साहब का 2 सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल है, 2 ही त्यौहार है, ईद उल फितर रमज़ान ईद اور عید الاضحیٰ بقرعید، کیا صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف دو ہی تہوار ہے، دو عیدیں نہیں بول سکتے، ایک ہے عید الفطر جو رمضان مہینے کے بعد آتی ہے نیا چاند دکھنے کے بعد، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ چاند دکھنے کے 10ویں تاریخ کو آتی ہے، یہ دو ہی تہوار ہے، اس کے بعد جتنے بھی تہوار ہے وہ کلچرل ہے ڈپینڈنگ اپان دا کنٹری اینڈ دا ایریا، بٹ اسلام میں قرآن حدیث کی روشنی میں صرف دو تہوار ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ اسلام میں انٹرسٹ ربا لینا دینا حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو آج کی دنیا میں ایک انسان کیسے رہ سکتا ہے، کیسے جی سکتا ہے؟ قرآن میں تقریباً 8 جگہ ذکر آتا ہے ربا کا، اور کئی جگہ کہا گیا حرام ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف یو گیو اپ ناٹ یور ڈیمانڈز آف ربا ٹیک نوٹس آف وا فرام اللہ اینڈ رسول، اگر آپ ربا کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور رسول آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، یعنی ربا لینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ آپ میری تقریر سنیے، انٹرسٹ فی اکانومی پروموگیٹ بائی دا قرآن، آپ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آج کے معاشرے میں کیا ربا کے بنا انسان جی سکتا ہے؟ میں جی رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ربا لیتا بھی نہ دیتا بھی نہ، سخت خلاف ہوں۔ ارے بھائی آپ بولے انسان کو دنیا میں انٹرسٹ کے بنا لینا پاسبل ہے، میں نہیں لے رہا ہوں، اور الحمدللہ کئی مسلمان نہیں لیتے، میں یہ بھی جانتا ہوں کئی مسلمان لیتے وہ حرام کرتے۔ ربا لینا اور دینا، ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ گیونگ انٹرسٹ از حرام، اٹ از ون آف دا بگیسٹ سن ان اسلام، انٹرسٹ از پروہیبیٹڈ، ربا از حرام۔ فار مور ڈیٹیلز ریفر ٹو مائی ویڈیو کیسٹ انٹرسٹ فی اکانومی پروموگیٹڈ بائی دا گلوریس قرآن، ہوپ دا آنسر از دا کوئسچن۔
اگلا سوال مائک نمبر 3 سے غیر مسلم خاتون سوال کریں۔
السلام علیکم، آئی ایم سشمیتا سین گپتا، ہوم میکر۔ اسلام میں عورت لوگ تو نماز ادا کر سکتی ہے، مسجد میں کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کولکاتہ میں کیوں نہیں ہے؟ اور عبادت میں کچھ فرق ہے کیا مرد کا اور عورت کا؟ وہ عیدگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے؟
بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں عورتیں مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ الگ کیوں ہے، اور عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتی؟ قرآن مجید میں بہن کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے، اس لیے اسلام کو دیکھنے کے لیے انڈیا کو مت دیکھو، پاکستان کو مت دیکھو، کولکاتہ کو مت دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ کئی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 آخری حدیث، ڈو ناٹ پریوینٹ دا فیمیل سرونٹ فرام گوئنگ ٹو دا ماسک، مطلب مومنہ کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اللہ کے رسول فرماتے۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 824، اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ڈو ناٹ پریوینٹ دا وومن ٹو گو ٹو دا ماسک ایون ایٹ نائٹ، اگر رات کو بھی اگر وہ چاہتے کہ مسجد میں جانا چاہتے تو مت روکو۔ تو مسجد میں عورتیں جا سکتے ہیں، وہ ابھی انڈیا پاکستان میں روکتے کیوں روکتے ان سے پوچھئے، قرآن و حدیث میں تو لکھا جا سکتے۔ کلکتہ میں بھی ایک آدھ مسجد ہے کیا نہیں بھائی؟ ہے، دو مسجد ہے بھائی صاحب، بولتے دو مسجد ہے، ایڈریس لے لینا آپ بعد میں، دو مسجد ہے جہاں خواتین جا سکتے، انشاءاللہ کل 4 ہوئیں گی، پرسوں 10 ہوئیں گی، انشاءاللہ سب مسجد میں اختیار ہوئیں گا، ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے پڑھیے جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں، طریقہ یکساں ہے، عورت اور مرد کا پڑھنے کا طریقہ یکساں ہے۔ آپ کو دوسرا سوال، عیدگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ، اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ، مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، حیض میں ہے، اف شی از ہیونگ پیریڈ یہ ٹیک ہر، بھلے وہ نماز نہیں پڑھے، تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے، اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا عورت عیدگاہ میں نہیں جا سکتے، عیدگاہ میں حیض کے حالت میں بھی جا سکتی، بھلے وہ نماز نہ پڑھے پھر بھی جا سکتی، ہوپ دا آنسر دا کوسچن۔
اگلا سوال مائک نمبر 1 سے۔
آئی ایم ڈاکٹر وویک کمار تیواری، آئی ایم اے ڈینٹسٹ بائی پروفیشن۔ تھینک یو ڈاکٹر ذاکر فار سچ اے نائس پریزنٹیشن۔ آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی، آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है, व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वूमेन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड।
भाई का सवाल है कि इस्लाम में ख्वातीन का कितना हक है कि वो अपने शौहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूँ, तरीका तो पहले बता दिया हूँ, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स, तरीका तो एक ही है लेकिन अगर मियाँ बीवी राज़ी है या नाराज़ी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राज़ी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त, इस्लाम इजाज़त देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज़ है, जायज़ कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फ़र्ज है वो आप नहीं कह सकती का शोर नहीं करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, ये अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूँ, इसे कहते हैं तलाक तहफीज़ या इस्मा, ये इजाज़त है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का तो ये भी जायज़ है, तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज़ आई वॉन्ट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूँ, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती मैं आपको आज़ाद करता हूँ, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पर जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो ख्वातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजिन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers.
Bhain ne sawal pucha hai, ke Islam mein nazdik ke rishtedar, first cousin ko shaadi karne ki izazat kyun hai? Aur main doctor hoon, to main sawal ka jawab achhi tarikhe se sakunga. Jo bhain ka sawal hai, ke Islam mein first cousin, chachadad bhai ya bhain se shaadi karne ki izazat hai, ye kyun hai? Quran mein जिस से ममानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपके बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सेंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कान है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियाँ होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजात भाई और चचाजात बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है, तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न चचाजात बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कान है, लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पर नहीं होंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
अगला सवाल माइक नंबर 3 से, आखिरी सवाल।
अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी।
मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
रुखशी इलियास
जी, आप मुसलमान हैं जी, आप पूछिए
जी। सूरह अल अहज़ाब में वर्स नंबर 50 में जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रॉफिट वी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मैरी सर्टेन रिलेशंस, उसी के आखिर में लिखते हैं कि अ प्रिविलेज फॉर यू ओनली नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ बिलीवर्स। Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet sallallahu alaihi wasallam?
Main ka sawal hai jo surah azab ki surah number 33 ke aate 50 51 52 mein likha hua hai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke liye privilege kyun hai, kyunki wo Allah ke rasool the. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you see in surah azab surah number 33 ayat number 52 mein likha hua hai, you cannot marry any other woman except what you already have. Neither can you exchange even if the beauty allows you. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक अलग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि आप चार से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल इजाज़त थी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की बीवियों से कोई भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उम्मातुल मोमिन थी। तो द रूल्स अल्लाह मैसेंजर और उनके बीवियों के लिए कुछ रूल्स डिफरेंट है बिकॉज दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो अल्लाह के रसूल को कहा गया था कि अगर उनसे चार से ज़्यादा बीवी थी वो रख सकते थे क्योंकि उनके बीवी को उम्मुहातुल मोमिन कहा गया था, मदर्स ऑफ द बिलीवर्स, इसीलिए उनके लिए रूल्स डिफरेंट था। वो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स आपको मिलेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।